नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में 126 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा, नैनीताल जिले को आदर्श और श्रेष्ठ जिला बनाने के लिए सरकार अनेक विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर किसान कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों की सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख मांग फेंसिंग के लिए विशेष बजट जारी करने की घोषणा की। और देश में आज कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीता कांडपाल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नैनीताल में 126 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी योजनाएं न केवल क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं भी प्रदान करने के साथ इस क्षेत्र के विकास की गति को भी तेज करेंगी। नैनीताल जिले को आदर्श और श्रेष्ठ जिला बनाने पर बल देते हुए श्री धामी ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार अनेक विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी को विज्ञान और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए देश के पहले एस्ट्रो पार्क के निर्माण की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही सांस्कृतिक मूल्यों और जनसांख्यिकी के संरक्षण के लिए भी दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। एनडीए सरकार के केंद्र में 11 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में श्री मोदी ने कहा कि यह सरकार के लिए गौरव की बात है कि उसने इस कार्यकाल में देश के परिश्रमी किसानों की सेवा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मृदा स्वास्थ्य और सिंचाई जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया, जो बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। देश में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष प्रसारण लेकर आया है। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है भारतीय किसानों के सशक्तिकरण पर यह विशेष रिपोर्ट।
पिछले 11 वर्षों में देश का कृषि क्षेत्र एक मौन क्रांति का गवाह रहा है। इसके पीछे बीज से बाजार तक के दृष्टिकोण की प्रेरणा रही है। कृषि में सरकार का बजट आवंटन लगभग 5 गुना बढ़ा है। 2013-14 में ये 28,000 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 1,37,000 करोड़ रुपए का हो गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि 11 करोड़ किसानों तक सीधे पहुंचाई गई है। किसानों की वित्तीय सुरक्षा में भी सुधार हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया। वहीं फसल बीमा योजना से लगभग 20 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है, जिनके 1,75,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का निपटान किया गया। गेहूं, धान, दलहन और तिलहन जैसी प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी हुई है। सोलर पंपों के लिए पीएम कुसुम और प्राकृतिक खेती मिशन जैसी योजनाओं से कृषि क्षेत्र में मजबूती और स्थिरता को बढ़ावा मिला। पीएम कृषि सिंचाई और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने सिंचाई और मृदा उत्पादकता को मजबूत किया है। किसानों को आधुनिक उपकरणों और वैज्ञानिक जानकारी के साथ सशक्त बनाया है। सरकार ने संबंधित क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। दूध उत्पादन में 63% से अधिक वृद्धि हुई है। इससे भारत दुनिया का शीर्ष डेयरी उत्पादक बन गया है और दूध उत्पादन से जुड़े 8 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। मछली पालन में भारत का उत्पादन 10 वर्षों में लगभग 2 गुना हो गया है। इससे ग्रामीण आजीविका और तटीय समृद्धि को बढ़ावा मिला। आज भारतीय किसान केवल एक कृषक नहीं है, अब वो राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहा है।
विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों से खेती को हो रहे नुकसान को देखते हुए किसानों की सुरक्षा से जुड़ी एक प्रमुख मांग बाढ़बंदी के लिए विशेष बजट जारी करने की घोषणा की है। देहरादून भ्रमण के दौरान श्री चौहान ने उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले काफल फल के बारे में कहा कि इसके औषधीय गुणों के कारण पूरे विश्व में काफल की मांग बढ़ रही है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री के दौरे को लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार किसानों के हितों के लिए काम कर रही है। श्री जोशी ने कहा कि कृषि और बागवानी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मिलेट्स नीति, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट योजना और सेब उत्पादन योजना जैसी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि सेब कटाई उपरांत प्रबंधन योजना के अंतर्गत राज्य के 11 पर्वतीय जिलों के 76 विकास खंडों में 22 CA स्टोरेज और 180 सॉर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट स्थापित की जाएंगी। इससे पर्वतीय क्षेत्रों के सेब उत्पादकों को लाभ मिलेगा। प्रदेश के जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से सरकार जल संरक्षण कार्यक्रम चला रही है। इसी क्रम में चंपावत में जल उत्सव पखवाड़े के तहत विभिन्न स्थानों पर पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान के तहत ग्रामीण सामूहिक श्रमदान कर बंद पड़े जल स्रोतों, नौलों और धारों की सफाई करने में जुटे हैं। जिले में सारा के नोडल अधिकारी डी कुमार ने बताया कि सरकार की मंशा है कि आम जनता जल संरक्षण के प्रति जागरूक हो। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति सूखे या बंद पड़े जल स्रोतों, धारों और नौलों पर सेल्फी लेकर भागीरथी ऐप के जरिए भेज सकता है ताकि सूखे जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा सके।
जल उत्सव पखवाड़ा का आयोजन 1 जून 2025 से 15 जून 2025 तक होना है। सरकार की मंशा है कि जल संरक्षण को लेकर के आम पब्लिक में जागरूकता बढ़ाई जाए, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जिला स्तर पर भी किया जाएगा और ग्राम स्तर पर भी किया जाएगा। इसके बड़े दो स्पष्ट उद्देश्य हैं। पहला तो लोगों के जल संरक्षण यानी जल के महत्व के बारे में बताना, उसको संरक्षण कैसे करें उसके तरीकों को बताना, और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो जल स्रोत सूख गए हैं तो इन जल स्रोतों का चिन्हीकरण करना, जहां पर पानी की कमी हो गई है उसके डिस्चार्ज को कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए एक भगीरथ ऐप लॉन्च किया गया है जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विगत 28 मार्च को किया गया था।
देश में आज कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा धार्मिक आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया। लोगों ने आज सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को बधाई दी। यह पर्व हजरत इब्राहिम द्वारा अल्लाह के आदेश पर अपने इकलौते पुत्र की कुर्बानी देने पर राजी होने की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। ईद का यह त्यौहार उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में भी धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी मिलन मार्ग पर कल देर शाम एक वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में 5 अन्य लोग घायल हो गए जबकि एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी ने आज जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और अधिकारियों को उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम जा रहे हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने पर पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए बड़ासू के पास हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग की। यूकाडा की सीईओ सोनिका ने बताया कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। पौड़ी के मुंडियाप गांव में गुलदार के हमले में ग्रामीण की मृत्यु के बाद वन विभाग की 2 टीमें गुलदार को पकड़ने के लिए गांव में गश्त कर रही हैं। इसके लिए विभाग ने क्षेत्र में 3 पिंजरे लगाए हैं, साथ ही ड्रोन समेत अन्य उपकरणों से गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में 126 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा, नैनीताल जिले को आदर्श और श्रेष्ठ जिला बनाने के लिए सरकार अनेक विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर किसान कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों की सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख मांग फेंसिंग के लिए विशेष बजट जारी करने की घोषणा की और देश में आज कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।